हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रिदांश आरना का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। आरना बोझिल कदमों और मन से उसके पीछे पीछे चलती रही, इस उम्मीद में कि उसके पापा उसे रोक लेंगे। लेकिन हर बार की तरह उसकी उम्मीद शीशे की तरह चकनाचूर होकर बिखर गई। बाहर रिदांश ने गाड़ी का साइड का दरवाज़ा खोलकर आरना को उसमें बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पूरे रास्ते आरना अपने ही ख्यालों में गुम रही और उसकी तंद्रा तब टूटी जब रिदांश की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। रिदांश, एक दुष्ट मुस्कान के साथ, वेलकम होम वाइफी। आरना ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी से उतरकर चुपचाप घर के अंदर चली गई। लिविंग एरिया में परेशान सा आयुष बैठा था और आरना को देखकर खड़ा हो गया। आयुष, भाभी आप ठीक तो है ना? भाई ने कुछ कहा क्या आपको? आरना कुछ कह पाती उससे पहले ही पीछे से आता हुआ रिदांश आयुष को टोक दिया। रिदांश, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है मेरी वाइफ की? ये हमारा पर्सनल मैटर है, तो स्टे अवे फ्रॉम दिस। भाई मैं तो बस ऐसे ही बीच में ही बात काटते हुए। पैक योर बैग्स, तुम आज रात की फ्लाइट से अपनी आगे की पढ़ाई के लिए US जा रहे हो। मैंने कुमार से कह दिया है, वो सब अरेंजमेंट करवा देगा, सो बी रेडी ऑन टाइम। भाई प्लीज, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहकर आगे की पढ़ाई कर लूँगा। सख्त लहजे से, तुम जानते हो कि मुझे अपने शब्द दोहराना बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो जितना कहा गया है उतना करो, राइट नाउ। इसके बाद आयुष बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चला गया और आरना भी अपने कमरे की ओर चली गई। कुछ पल बाद उसे कमरे में रिदांश के आने की आहट महसूस हुई, लेकिन वो चुपचाप बैग से अपने कपड़े निकालने लगी। रिदांश, तंज कसते हुए, वैसे मानना पड़ेगा कि लोगों पर अच्छा खासा जादू कर लेती हो। मेरी माँ, जो अपने पास कुछ लोगों को छोड़कर अपने सगे बच्चों को भी नहीं आने देती, उन्होंने तुमसे खाना खाया। वाकई में अनबिलीवेबल है। बाकी मर्दों का क्या कहना, उन्हें तो तुम एक बार में ही अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर देती हो। आरना रिदांश की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है। ऐसे क्यों देख रही हो? ठीक ही तो कहा मैंने। चाहे वो तुम्हारा सो कॉल्ड दोस्त हो या दो बार मिला करण या फिर आयुष ही क्यों ना हो, सब तुम्हारी तरफदारी के लिए फौरन खड़े रहते हैं। आरना रिदांश को पूरी तरह नज़रअंदाज करके बाथरूम की ओर जाने लगी कि रिदांश गुस्से से उसकी बाजू पकड़कर उसे वापस खींच लिया। रिदांश, सख्ती से, दोबारा मुझे इग्नोर करने की सोचना भी मत, वरना। आरना, रिदांश की आंखों में देखते हुए, वरना? वरना क्या करेंगे आप? मारेंगे? खाना पीना जो पहले से बंद कर दिया वो बंद करेंगे? सांस लेने पर पाबंदी लगाएंगे? या इस बार उससे भी ज्यादा कुछ और टॉर्चर करेंगे? अपनी बाजू छुड़ाते हुए, आपको जो करना था मिस अग्निहोत्री आप कर चुके हैं, और अब इससे ज्यादा ना तो आप कुछ कर सकते हैं और न ही इससे ज्यादा मुझे तोड़ ही सकते हैं। रिदांश, तंज कसते हुए, ओह, तो फाइनली तुम्हारे मुंह में भी जुबान आ ही गई, ग्रेट। आरना, रिदांश की तरफ देखकर, जानते हैं, पहले मुझे आप पर, आपकी बातों पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे आप पर सिर्फ तरस आता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनों के बीच रहकर भी अकेला हो तो ये सच में उसके लिए बड़ी ही बदकिस्मती की बात है। आपको क्या लगता है, आपके भाई बहन या फिर जितने भी लोग हैं वो सब आपकी इज्जत करते हैं? नहीं, बल्कि आपकी इज्जत से कहीं गुना ज्यादा आपके डर से सब लोग आपके आगे सर झुकाए खड़े रहते हैं। हकीकत तो ये है मिस अग्निहोत्री कि आपने अपने अंदर इतनी नफरत और जहर भर लिया है कि जिसके आगे आपको कुछ नजर ही नहीं आता, और जब तक आप अपने अतीत से बाहर नहीं आएंगे तब तक आपको कुछ नजर आएगा भी नहीं। आप तो अपने गुस्से में इतने सेल्फिश हो गए हैं कि अपनी माँ की खुशी और ख्वाहिश की परवाह तक नहीं आपको, बस उन्हें एक कैदी की तरह एक कमरे में बंद करने का फरमान जारी किया हुआ है, क्योंकि आपको हर इंसान सिर्फ गलत और दुश्मन ही नजर आता है। और रही मेरी बात, तो अब आपको जो भी करना है, जितना भी टॉर्चर करना है, कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा मिस अग्निहोत्री, कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने किए के लिए बहुत पछताएंगे आप, और तब आपको एहसास होगा कि आप कितने गलत थे, लेकिन तब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तक कि माफ़ी भी नहीं। इतना कहकर आरना अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। हैरानी की बात तो ये थी कि आज पहली बार आरना ने रिदांश की आंखों में आंखें डालकर पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे जवाब दिया था, और उसकी इस हिम्मत की वजह सिर्फ उसके पापा और उनकी हालत थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि रिदांश ने आरना के इतना कहने के बाद भी उसे जवाब में कुछ भी नहीं कहा और न ही उसे रोका, बल्कि वो चुपचाप वहां से निकलकर अपने स्टडी रूम में आ गया और अपनी कुर्सी पर बैठकर आरना की कही बातों को याद करने लगा। आप तो अपने गुस्से में इतने सेल्फिश हो गए हैं कि अपनी माँ की खुशी और ख्वाहिश की परवाह तक नहीं आपको। आपकी इज्जत से कहीं गुना ज्यादा आपके डर से सब लोग आपके आगे सर झुकाए खड़े रहते हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा मिस अग्निहोत्री, कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने किए के लिए बहुत पछताएंगे आप, और तब आपको एहसास होगा कि आप कितने गलत थे। लेकिन तब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तक कि माफ़ी भी नहीं। इतना कहकर आरना अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। हैरानी की बात तो ये थी कि आज पहली बार आरना ने रिदांश की आंखों में आंखें डालकर पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे जवाब दिया था, और उसकी इस हिम्मत की वजह सिर्फ उसके पापा और उनकी हालत थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि रिदांश ने आरना के इतना कहने के बाद भी उसे जवाब में कुछ भी नहीं कहा और न ही उसे रोका, बल्कि वो चुपचाप वहां से निकलकर अपने स्टडी रूम में आ गया और अपनी कुर्सी पर बैठकर आरना की कही बातों को याद करने लगा। आप तो अपने गुस्से में इतने सेल्फिश हो गए हैं कि अपनी माँ की खुशी और ख्वाहिश की परवाह तक नहीं आपको। आपकी इज्जत से कहीं गुना ज्यादा आपके डर से सब लोग आपके आगे सर झुकाए खड़े रहते हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा मिस अग्निहोत्री, कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने किए के लिए बहुत पछताएंगे आप, और तब आपको एहसास होगा कि आप कितने गलत थे। लेकिन तब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तक कि माफ़ी भी नहीं। इतना कहकर आरना अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। हैरानी की बात तो ये थी कि आज पहली बार आरना ने रिदांश की आंखों में आंखें डालकर पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे जवाब दिया था, और उसकी इस हिम्मत की वजह सिर्फ उसके पापा और उनकी हालत थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि रिदांश ने आरना के इतना कहने के बाद भी उसे जवाब में कुछ भी नहीं कहा और न ही उसे रोका, बल्कि वो चुपचाप वहां से निकलकर अपने स्टडी रूम में आ गया और अपनी कुर्सी पर बैठकर आरना की कही बातों को याद करने लगा। आप तो अपने गुस्से में इतने सेल्फिश हो गए हैं कि अपनी माँ की खुशी और ख्वाहिश की परवाह तक नहीं आपको। आपकी इज्जत से कहीं गुना ज्यादा आपके डर से सब लोग आपके आगे सर झुकाए खड़े रहते हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा मिस अग्निहोत्री, कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने किए के लिए बहुत पछताएंगे आप, और तब आपको एहसास होगा कि आप कितने गलत थे। लेकिन तब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तक कि माफ़ी भी नहीं। बहुत पछताएंगे आप, और तब आपको एहसास होगा कि आप कितने गलत थे। लेकिन तब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तक कि माफ़ी भी नहीं। आरना की कही बातें एक एक करके रिदांश के कानों में गूंजने लगीं, और वो फ्रस्ट्रेशन से अपने हाथों से अपने बाल नोचने लगा। वो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर क्यों आरना की कही गई बातें उसे इतना प्रभावित कर रही थीं। रिदांश गुस्से से अपने कानों पर हाथ रखते हुए, जस्ट शट अप, नहीं हूँ मैं गलत, नहीं हूँ, नहीं किया मैंने कुछ भी गलत, कभी नहीं पछताऊंगा मैं, वो सिर्फ मेरे दिमाग से खेलने की कोशिश कर रही है, नहीं हूँ मैं गलत। फुल एसी में भी इस वक्त रिदांश का पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था, उसकी आंखें पूरी लाल हो रही थीं और उसका सर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे प्रेशर से अभी फट जाएगा। रिदांश जल्दी से अपनी टेबल की दराज से एक टैबलेट का पाउच निकाला और उसमें से एक टैबलेट जल्दी से अपने मुंह में रख लिया और टेबल पर रखे पानी के ग्लास से पानी पीकर टैबलेट निगल गया और कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करके अपना सर कुर्सी से टिका लिया। कुछ पल बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे पर सामान्य जैसे भाव उभर आए।